सत्य की मशाल हम जलाएंगे, प्रेम के प्रकाश को फैलाएंगे। भेदभाव हो नहीं यहाँ कोई, ऐसा एक परिवर्तन लाएंगे। शस्त्र जो उठाता है वो शस्त्र से मिट जाता है, शस्त्र जो उठाता है वो शस्त्र से मिट जाता है। प्यार जो बरसाता है वो प्यार सबका पाता है, प्यार जो बरसाता है वो प्यार सबका पाता है। हिंसा को अहिंसा से मिटाएंगे, धरती को स्वर्ग हम बनाएंगे। कभी कहीं भी अशांति हो नहीं, ऐसा एक परिवर्तन लाएंगे।
शांति। सत्यता की शक्ति। मुरलीहन 12 मार्च 1985। तो जैसे गीत में सुना, सत्य एक शस्त्र की तरह है। जीवन में आने वाली परिस्थितियां जो हैं, उनको वास्तव में काटने का एक शस्त्र है, वो शस्त्र का काम करता है। सत्य की नाव हिलेगी डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, कहा जाता है। और बाबा मुरली में कहते हैं, सच तो बिठो नच। जो व्यक्ति सत्य होता है वो अंदर से एक ताजे पानी की तरह होता, कहा जाता है ताजे पानी की तरह, अर्थात जिसमें झूठ होता है, शलकपट होता है, उसको बहुत सारे षड्यंत्र रचने पड़ते हैं। एक झूठ बोलने के बाद बहुत सारे उसकी लंबी माला बन जाती है, झूठ पर झूठ उसके एक ढेर लगता जाता है। फिर उस झूठ को छिपाने के लिए अगला झूठ, उस झूठ को छिपाने के लिए अगला झूठ, और हमेशा डर डर में रहते हैं क्योंकि कहीं उसके झूठ का पर्दाफाश ना हो जाए। लेकिन जो व्यक्ति सत्य होता है वो निश्चिंत रहता है, ताजे पानी की तरह, अर्थात अनेक विचार उसको बुनने नहीं पड़ते हैं, तैयार नहीं करने पड़ते हैं, फ्रेश रहता है वो हमेशा। तो सत्य वास्तव में हमारा ओरिजिनल स्वरूप है। बाबा भी हम सबको, ये जो देह है असत्य है, देह ही आत्मा सत्य है, तो हम असत्य की चादर जो है हमारे ऊपर चढ़ी हुई है, उससे हमको निकाल कर कैसे सत्य स्वरूप में स्थित करना चाहते हैं। बाबा ने कहा आकर्षण क्यों हुआ, जो मुरली में बाबा ने शुरुआत किया, तो सत्यम शिवम सुंदरम बाबा इस मुरली में सत्यता की शक्ति के बारे में विस्तार पूर्वक बता रहे। सत्यता की शक्ति हमको, अर्थात यहाँ सार यह है कि बाप को कैसे प्रत्यक्ष करें, सत्यम शिवम सुंदरम बाबा को कैसे प्रत्यक्ष करें। तो उसमें बाबा ने बहुत सारी युक्तियां बताई हैं। 1985 मुरली की डेट है, उसके नेक्स्ट ईयर गोल्डन जुबली है, तो पहले से जो रूपरेखा तैयार की जा रही है कि गोल्डन जुबली में जो भी होने वाले कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों में कैसे सत्यता को प्रत्यक्ष किया जाए, और 50 साल के इतिहास में क्या क्या हुआ बाबा ने उसके बारे में अवगत कराया, विदेशियों के बारे में थोड़ी चर्चा की, फिर कहां कहां गुप्त रूप से जो टॉपिक चलाते रहे जो मुख्य रूप से है, और उसका क्या फायदा हुआ, कैसे आत्माएं नजदीक आई, तुम बच्चों का जन्म कैसे हुआ है, फिर इस मरले में बड़े दादी और मोहिनी बहन भी हैं, भोपाल सेवा जा रहे हैं, उनके बारे में बाबा ने चर्चा की और सेवाओं के अलग अलग जो विधि हमने देखी कैसे 8 प्रकार की हैं, तो अनेक प्रकार की इसमें बहुत सारी बातें हैं, तो इसको कम से कम कोई 20-25 बार पार पड़ेंगे तो अच्छी तरह से पकड़ में आएगी, लेकिन टॉपिक घुमा घुमा के दिमाग पजल हो जाता है कहाँ से पकड़े इसको। तो इस मुरले की जो शुरुआत है, बाबा कहते हैं सत बाप, सत शिक्षक और सत गुरु किससे मिलने आए हैं? सत्य स्वरूप बच्चों से मिलने आए हैं, अर्थात हम सब आत्माओं को बाबा भरपूर करने के लिए आए हैं, सत्यता की शक्ति से हमारे ओरिजिनल स्वरूप का हमको अनुभव कराने के लिए आए हैं, स्थित करने के लिए आए हैं। तो बाबा ने कहा सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु अपने सत्य स्वरूप बच्चों को मिलने आए हैं, और यह है सत्य ज्ञान, सत्यता की शक्ति है और ये महान है। इस महानता के आधार पर क्या क्या हुआ, तुम बच्चों को क्या क्या मिला? सत्य बाप, सत्य ज्ञान मिला, बाप सत्य परिचय मिला, सत्य सच्चा परिवार मिला, सच्चा स्नेह मिला, सच्ची प्राप्तियां मिली, तो कितनी सारी हमको ये चीजें हमको मिल गई, और इसी प्राप्ति के आधार पर हम एक बाप के बन गए। तो और इस क्यों आकर्षित हुए, क्योंकि ये सच्चा ईश्वरीय परिवार राजयोग की तरफ क्यों आकर्षित हुए, तो इसमें बाबा ने आगे दो बातें बताई, सत्य अर्थात एक तो सत्यता की शक्ति, दूसरा सत्य अर्थात अविनाशी, अपरिवर्तनशील। इसमें बाबा ने यह भी कहा बीच में, सत्यता और अविनाशी यही पहचान है, परमात्म ज्ञान की पहचान है। तो इस अविनाशी ज्ञान से, सत्यता से हम सबको, फिर बाबा ने आगे बताया, अविनाशी परिवार मिला। पूरे कल्प में हम सब आत्मे रहेंगी, भले अलग अलग नाम से हैं, अलग अलग रंग रूप से हैं, लेकिन हम सब अविनाशी आत्मा हैं, तो पूरे कल्प में रहेंगी, तो ये हमारा अविनाशी परिवार है। अविनाशी स्नेह मिला और अविनाशी प्राप्तियां हैं, ये जो स्नेह है ये विखंडित होने वाला नहीं है, वो एक अलग बात है कि हम अलग हो जाते हैं। बाबा ने कई मुरले में कहा है कि मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे भी हैं जो सर्वशक्तिवान बाप को अलग कर देते हैं, बच्चों में इतनी शक्ति है, ये तो हम अलग हो जाते हैं, लेकिन ये अविनाशी स्नेह है जो अलग अविभाज्य है, अलग होने वाला नहीं है। तो हम सबको अविनाशी स्नेह मिला, अविनाशी प्यार मिला, अविनाशी प्राप्तियां मिली, अविनाशी बाप मिला, तो ये अविनाशी जो सारे कल्प में हम साथ साथ चलेंगे, इस कारण तुम बच्चे आकर्षित हुए हो। और जैसे तुम बच्चे आकर्षित हुए, ऐसे ही अब अन्य आत्माओं को इस ज्ञान से, इस ज्ञान में आए बाप की तरफ आकर्षित करो, बाप से जोड़ो, तो फिर यहां से सेवा की युक्तियां चालू हो जाती हैं, कैसे आगे सेवाएं करनी है, तो उसकी जैसे 8 प्रकार की विधियां होती है। इससे पहले बाबा ने बताया कि 50 वर्ष तुम लोगों ने क्या किया, तो धरनी बनाई, और धरनी कैसे बनाई, 50 वर्ष दो धरनी बनाई, उसमें 50 वर्ष में क्या क्या किया, तो बाबा ने कहा स्नेह में लाया आत्माओं को, संबंध संपर्क में लाया, बाप के समीप तो लाने का प्रयास किया, लेकिन बीच में एक और बात कही बाबा ने कि सर्वव्यापी का जो बात थी, तो गुप्त रूप से उनको ज्ञान देते रह ले, लेकिन वो प्रत्यक्ष नहीं हो पाया, तो उसके आगे फिर प्रत्यक्षता की विधियां बताई। जैसे संसार में बाबा ने कहा कि मानते हैं सभी कि परमात्मा एक है, लेकिन ज्ञान के बारे में अलग अलग मान्यता है उनकी, तो बाबा ने कहा जैसे तुम बच्चे आकर्षित हुए, ऐसे उन आत्माओं को भी बाप की तरफ आकर्षित करो, वो भी माने कि ज्ञान ये एक ही ज्ञान है, ये एक ही रास्ता है, स्पष्ट करो, क्लियर करो। तो ये ज्ञान के बारे में बाबा ने फिर यहां से युक्तियां की, फिर अलग अलग तरीके से बताए, जो 8 तरीके बताए उसके लिए क्या क्या करो, वर्कशॉप, और वर्कशॉप में तो ये शायद 1985 में विंग्स की स्थापना हुई, उसी समय शुरुआत हुई था, यूथ विंग सबसे पहला बना, अभी जो 18 विंग्स बन चुके हुए हैं, तो उसके बाद फिर सेवाओं का विस्तार अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग देशों में, कैसे अनेक वर्गों में इस ज्ञान को कैसे रखा जाए, तो वहां से फिर शुरू हुए वर्कशॉप के लिए बताया, अलग अलग तरीके से वर्कशॉप करो आप, क्योंकि मनुष्य की आदत है कि भिन्नता चाहता है, वो एक ही चीज को बार बार एक ही तरीके से रखें तो वो बोर हो जाएगा, क्योंकि सबकी मेंटेलिटी अपनी अपनी है, तो वर्कशॉप करो। उसके बाद और क्या बताया बाबा ने अभी सेकंड नंबर में, और क्या था? शेयर। हाँ, और बाबा ने कहा कि आप एक ही बात को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, जो आपका अपना व्यक्तिगत अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर उनको आकर्षित करो, है ना। अगर एक ही टॉपिक बार बार रखेंगे तो उस टॉपिक से वो प्रभावित नहीं होंगे, तो उस टॉपिक को भी लग रहा है कि आपने इस टॉपिक, मतलब हम अपने अनुभव से उनको बताएं कि हमने उससे संबंध जोड़ के क्या प्राप्ति की है, अनुभूति की है। केवल उनको ज्ञान ही नहीं, लेकिन उस ज्ञान से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है। तो पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें, हमारे जीवन में क्या बदलाव हुआ है, हमने क्या पाया है, कैसे हमने दुख दर्द से मुक्ति पाई है, वो हम अपना पर्सनल व्यक्तिगत अनुभव सुना सकते हैं कि हम भगवान से कैसे मदद का अनुभव करते हैं, उसका क्या मेथड है, उसके क्या धारणाएं हैं, क्या करना पड़ता है। तो पर्सनल एक्सपीरियंस अगर उनके हम आगे रखते हैं, और एक्सपीरियंस से वास्तव में प्रभावित होते हैं, क्योंकि हमारा जो हमारा जीवन उनको दिखाई देता है, तो हम अपने व्यक्तिगत अनुभव से उनको परिवर्तन कर सकते हैं। और क्या बताया तीसरी बात? चार चीजें। हाँ, चार चीजें कौन सी? हाँ, तो उसमें बाबा ने फिर एक एग्जाम्पल भी दिया, उसमें साकार मूल्यों का भी दिया कि जो आपको अपनी बात उनके आगे रखनी है, तो उसमें अथॉरिटी भी हो, निर्माणता भी हो, और रहम भाव, और चौथी सत्यता। तो अगर ये चार बातें हैं तो फिर अभिमान नहीं होगा। जैसे बाबा ने उसमें बताया कि तुम बच्चे साकार मूल्य में सुनते हो, तो बाबा की उसमें अथॉरिटी होती है, लेकिन उसमें अभिमान नहीं है, रहम भाव है, इसलिए वो बात आप हमारे मन को लग जाती है। नहीं तो वो क्या समझेंगे कि आप इनको अपनी बातों का नशा है, अभिमान है। तो ये चार बातें हमारे अगर बोल में है, हमारे जीवन में है, तो वो उनके दिल में लगेंगी। कौन कौन सी? अथॉरिटी, सत्यता, नम्रता और रहम भाव। तो ये चार बातें अगर हमारे जीवन में है, तो वो उनके दिल में लगेगी। और नेक्स्ट अगली कौन सी बात बताई? अलग अलग टॉपिक्स। तो अलग अलग टॉपिक्स है, कौन कौन से टॉपिक? मुरली में तो तीन चार टॉपिक हैं, इस तरह से बहुत सारी बातें बाबा ने बताई हैं उसमें, और भी हो सकती हैं उसमें। तो ये भी बताया अलग अलग टॉपिक किस तरीके से, एक तो सर्वव्यापी की बात बताई, फिर कुछ एक जो स्लोगन थे, उस स्लोगन नेक्स्ट आएगा। हाँ, तो टॉपिक अलग अलग से सर्वव्यापी का है, या गीता का भगवान कौन है, इसमें बाबा ने फिर याद कराया कि जैसे तुम बच्चों की विहंग मार्ग की सेवा आरंभ हुई, तो उसमें प्रदर्शनी में तुम क्या करते थे, फार्म भराते थे, उनसे ओपिनियन लिखाते थे, एक्सपीरियंस फीडबैक फार्म लेते थे, तो वो चीजें हम लेते थे उनसे। तो अलग अलग तरीके से, अलग अलग टॉपिक से हम इस बात को उनके सामने रखेंगे, तो फिर भी वो आकर्षित होंगे। और टॉपिक समय अनुसार, या सामने वाला जो व्यक्ति है या सामने वाली सभा है, समय के अनुसार उनको किस चीज की जरूरत है। जैसे बाबा ने एक चीज और बताई कि विश्व में शांति हो, इसके लिए तो बहुत सारे भाषण किए, लेकिन संसार में जो आज आध्यात्मिकता के ऊपर जोर दिया जाता है, तो ये भी एक टॉपिक है, आध्यात्मिकता क्या चीज है। तो इसके ऊपर भी बाबा ने फोकस दिया कि आध्यात्मिकता को भी उनको बताओ, आध्यात्मिकता का सोर्स क्या है। तो अलग अलग टॉपिक से हम उनके सामने ये इस ज्ञान को रख सकते हैं। और क्या बताया नेक्स्ट? स्पीकर। हाँ, अलग अलग स्पीकर और अलग अलग टॉपिक तो हो गए। तो स्लोगन, हाँ, स्लोगन में जो चीज थी, एक तो दो तीन स्लोगन उसमें बताए कि जैसे मनुष्य की सदगति मनुष्य नहीं कर सकता, एक बाप ही सदगति कर सकता है। इस तरह से और भी बातें हो सकती हैं, एक बाप ही जो कह सकते जो मनुष्य नहीं कह सकता है, मनुष्य भगवान नहीं हो सकता है, और मनुष्य की सदगति नहीं कर सकता है। ऐसे ये कोई नहीं कह सकता है कि मैं पतित पावन हूं, संसार में एक मनुष्य नहीं कह सकता है। तो इस तरह के अलग अलग टॉपिक रख सकते हैं। ये संसार में कोई नहीं कह सकता है कि देश हित अपने, दुनिया के स्लोगन भी लिए जा सकते हैं जो वो कहते हैं, लेकिन वो हमारे ज्ञान के अनुकूल, अर्थात जो बाबा ही उनको सिद्ध कर सकते हैं, वो उनका केवल कहने मात्र तक है, लेकिन सिद्ध उसको भगवान ही कर सकते हैं। जैसे बाबा कहते हैं मैं तुम आत्मा को सबका मालिक है एक, हाँ, उसको कैसे सिद्ध कर सकते हैं? वसुदैव कुटुंबकम की भावना जो हम पढ़ते थे किताबों में, तो वास्तव में वो सत्यता, सत्य रूप से चरित्रार्थ तो यही होता है, वसुदैव कुटुंबकम की भावना। फिर पतित पावन वाली बात हो गई, फिर मैं तुम आत्माओं को साथ ले जाऊंगा, ये संसार में कोई नहीं कह सकता है, मैं केवल सदगति दाता हूं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिः निवृत्तिः। तो ये वाली बात भी यहां सिद्ध की जा सकती है। चिंता छोड़ो, प्रभु चिंतन करो, संसार में बोला जाता है लेकिन छूटना कैसा है, यह मुश्किल होता है उनके लिए, तो यह भी सिद्ध किया जा सकता है। चिंता चिता समान तो हाँ, हम सब भाई भाई हैं, जो पढ़ाते तो हैं हिंदू मुस्लिम सिख से आपस में भाई भाई, लेकिन वास्तविक रूप तो यहां आकर पता चलता है कि किस रूप में हम सब भाई भाई हैं, तो वो टॉपिक भी सिद्ध कर सकते हैं। और केवल मुझे याद करने से तुम्हारे पाप भस्म होंगे, मन मना भव, मध्याजी भव, तो ये सारी बहुत सारी बातें हैं जिनको हम उनके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं कि ये केवल एक भगवान के ही घर में ये बातें सत्य सिद्ध होती हैं और कहीं नहीं हो सकती हैं। और नेक्स्ट कौन सा बताए सेवा की युक्ति? तीर लगे, दर्द भी ना हो और वो तीर लग जाए उनको। इसके संबंधित पिछले संडे की मुरली में था, कौन सी बात? हाँ, वो पंछी के, कि पंछी को तीर भी लगे, पंछी भी मरे लेकिन चरणों में आकर गिरे, तो एक एनेस्थीसिया वाली बात है ये। तो एनेस्थीसिया वाला कैसे करता है, बेहोश करता है, तो चूहे की तरह फूंक भी मारे लेकिन वो बाप का ही बन जाए, उनको दर्द भी ना हो। तो उस अर्थात यहां फिर वही बात है कि अपना नशा नहीं दिखाना। बाबा ने उसमें कहा कि अपना नशा उनको ही ना, कि ये ब्रह्मा कुमारीज वाले अपनी बातों का नशा दिखा रहे हैं, तो उनको ये अनुभव ना हो। तो इसमें वही अभिमान वाली बात है, अभिमान ना हो उनको, उतना सत्यता से, मधुरता से, निर्माणता हमारे में, अर्थात उनके उनको हमारे में कुछ अलग से दिखाई दे कि सचमुच ये सत्य ज्ञान इनके पास में ही है। और नेक्स्ट कौन सा बताया? रूपरेखा, भाषणों की रूपरेखा चेंज करो। जैसे उसमें ड्रामा की बात बताई बाबा ने, आत्मा की बात बताई और सर्वव्यापी वाली बात बताई, कि सीधा ये नहीं कहो कि सर्वव्यापी है या नहीं है, उसको वही प्राप्तियों वाली बात, क्या क्या उससे प्राप्ति होती है, क्या क्या अनुभूति होती है, तो वो उनके सामने प्रस्तुत करो, तो वो तो उनको ये सर्विस का तीर लगेगा। और प्लान बीज, हाँ, तो विदेशियों के साथ बात की, तो विदेशियों के साथ बाबा ने पहले तो ये बोला कि ब्रह्मा बाप के आह्वान से तुम बच्चे पैदा हुए हो, देर आए लेकिन तंदुरुस्त आए। तो ऑस्ट्रेलिया वाले साइकिल माइकिल आए होंगे तो बोला अच्छे तंदुरुस्त हैं उसमें तो वो देर आए लेकिन तंदुरुस्त आए, अच्छे है। तो बाबा ने कहा कितने लंबे समय से बाप तुम बच्चों का आह्वान कर रहे थे, तो यहां उनको बताया कि वो इसमें पहले सेवा करने के लिए पहले सोनति और सेवा इसका बैलेंस चाहिए। बैलेंस होगा तो फिर स्वयं को भी ब्लेसिंग मिलती रहेगी और दूसरों को ब्लेसिंग मिलती रहेगी। और इस बीज में पावर बननी है, प्लेन के साथ पावर बननी है, और इसका परिणाम शक्तिशाली बीज होगा तो फल भी शक्तिशाली श्रेष्ठ निकलेगा। लेकिन बाबा ने कहा धरनी तो बनाने में भले टाइम लगता है लेकिन बीज शक्तिशाली है तो फल अपने आप शक्तिशाली हो जाएगा। तो ये विदेशियों के साथ। और फिर ये भी बाबा ने कहा कि कितने टीचर्स तैयार कर दिए हैं, तो विदेशियों की भी मुबारक दी। फिर एक बाबा ने विदेशियों से और बात कही कि विशेष ब्रह्मा बाप के संस्कार कौन से थे? सेवा के संस्कार थे, तो तुम बच्चों में भी सेवा के संस्कार हैं, तो इसलिए ब्रह्मा बाप का विशेष आप बच्चों से स्नेह है, स्नेह के वरदान से पल रहे हो, स्नेह का वरदान है और स्नेह का कनेक्शन है बाप के साथ। तो ये था विदेशियों के साथ। फिर हाँ, भारत विशेष ब्रह्मा बाप से स्नेह, वो आए हाँ उसमें चैतन्यता का, भले बाप को देखा नहीं है, ब्रह्मा बाप को देखा नहीं है लेकिन चित्र में भी चैतन्यता का अनुभव करते हैं। जैसे अभी यहां लगा था आंगन में दादियों के जो चित्र लगे थे दिवाली के समय में, तो कैसे चैतन्य में सब अनुभव होते थे। तो ऐसे बाबा विदेशियों को भी संबोधित कर रहे हैं कि भले ब्रह्मा बाप को देखा नहीं है लेकिन फिर भी चित्र देखे चैतन्यता का अनुभव करते हैं, वो महसूस नहीं करते हैं कि बाबा गए हैं, हमारे साथ ही रहते हैं। तो ये चीज थी सार उन विदेशियों के साथ। भारत वाले प्रश्न पूछते रहते हैं ब्रह्मा के बारे में, कई सारे प्रश्न पूछते हैं, हम तो नहीं है? हमारे इसमें क्यों नहीं आए तो भारतवासी प्रश्न पूछते रहते हैं, विदेशी प्रश्न नहीं पूछते हैं। तो ये था प्रश्न जो भारतवासी पूछते हैं, बी मतलब अपने बाहर वाले लोग पूछते हैं, ब्रह्मा में क्यों आया, तुम्हें आए वास्तव में ये तो प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि जिसमें भी आएगा प्रश्न तो फिर वहीं खड़ा रहेगा कि तुम में क्यों आया तो ये विदेशियों और भारतवासियों के साथ बाबा की रूहान थी। फिर बाबा ने बड़े दादी जी से और मोहिनी मेल तिनके हाँ तिनके का सहारा। तो वो ये था कि जब तक ये ज्ञान स्पष्ट नहीं होगा तो ये आत्माएं जो है अनेक तिनके का सहारा ढूंढने के लिए भटकती रहेंगी, ये था। और एक और बात थी, कौन सी? अनेकता की भ्रांति नहीं मिटेगी तो विश्व शांति तब तक नहीं होगी, सभी एक झंडे के नीचे आएंगे तब। और प्रत्यक्षता का आरंभ बाबा ने यहां मधुबन से कहा था, जो मधुबन की विशेषताएं बताई, यहां पांच विशेषताएं बताई कि बाहर तो वातावरण को देखना पड़ता है, जो भी बाहर हम स्टेज बनाते हैं, लेकिन मधुबन तो बनी बनाई स्टेज है, वातावरण है, बुद्धि शुद्ध है, यहां पवित्र बुद्धि है और स्नेह है, अविनाशी स्नेह है, स्नेह की भूमि है, पालना की भूमि है। तो ये सारी यहां बातें, यहां तो वातावरण बनाया, तो इस वातावरण में उनको स्पष्ट ज्ञान दो। पहले पहले तो घुमा फिरा के देते रहे, तो अब बाबा कह रहे कि स्पष्ट ज्ञान दो उनको। तो ये वाली बात थी। फिर लास्ट में भोपाल, हाँ, बड़े दादी जी भोपाल जा रहे हैं मोहिनी बहन के साथ। तो बाबा ने कहा कि आपका जाना भी सेवा है और रहना भी सेवा है। तो यहां बाबा ने कहा कि सफलता लेकर जा रही हो, बाप को साथ लेकर जा रही हो, सफलता लेकर जा रही हो, और वहां जाने से आप जाएंगे तो उमंग उत्साह में आएंगे और उस उमंग उत्साह से सेवा स्वतः होती रहेगी। तो ये बड़ी दादी जी से बात की है और मोहिनी बहन से बात की बाबा ने कि मोहिनी बहन जब जाएंगे तो पूछेंगे, क्या पूछेंगे? नहीं, बाप का याद प्यार लाई हो क्योंकि वो संदेश में जाते मोहिनी बहन जी। तो बाबा ने कहा कि ये आपसे पूछेंगे, बाप का याद प्यार ले। हाँ, और एक मोहिनी बहन जी से विशेष बात कही कि ये जो सेवाओं कि ये जो टॉपिक वगैरह सिद्ध करने हैं, तो बाबा ने कहा तुम इससे शुरुआत करो तो तुम नंबर वन बन जाओगी। तो छोटे छोटे उनको टोट के बताओ और रमणीकता से पुरुषार्थ करके सिखा के आना ताकि वो निरंतर आगे बढ़ते रहे। तो ये सारे मुरली में बहुत सारी बातें थी, इसको पकड़ने के लिए बहुत सारी बुद्धि को एकाग्र करना पड़ता है, लेकिन फिर भी जितनी हुई नहीं जितनी होनी चाहिए क्योंकि सारी बिखरी बिखरी बातें घुमा घुमा गई। तो उससे तो आने वाले संडे की ठीक है बोलिए आगे भाई लेकिन ये वास्तव में सेवाओं के क्षेत्र में अनेक प्रकार की युक्तियां हैं। सामने वाले को देख के कैसे हम उसको ज्ञान दें, कैसे बाबा का परिचय दें, सेवाओं में सफलता कैसे प्राप्त करें, कैसे रूपरेखा भाषण की चेंज हो, कैसे कौन कौन से टॉपिक लिए जाएं। तो ये सारी अनेक प्रकार की सेवाओं के क्षेत्र में सफलता अर्जित करने के लिए बाबा ने हम सबको अनेक प्रकार के सूत्र बताए हैं। तो इनको हम बार बार रीड करेंगे, बार बार तब कहीं पकड़ में आता है, नहीं तो हाथ से निकल खिसक जाती सारी बातें। तो ये थी सत्यता की शक्ति। तो शॉर्ट में यही है कि सबसे पहले तो बाबा ने सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु ने सत्यता के स्वरूप बच्चों को देखा। और आकर्षण क्यों हुआ? हाँ, बाबा ने कही राजयोगी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ आकर्षण क्यों? क्योंकि सत्य है ये। जैसे तुम बच्चे आकर्षित हुए धर्म रीति रस्म संसार में, हाँ, जो धर्म है अनेक मान्यते हैं, अनेक रीति रस्म है, लेकिन फिर भी आकर्षित हुए क्योंकि यहाँ सत्य मिला, सत्य बाप मिला, सत्य परिवार मिला, सत्य ज्ञान मिला, सत्य परिचय मिला और अविनाशी मिला। फिर ये सत्य अर्थात अविनाशी भी है, अविनाशी मिला, तो इस अविनाशी के कारण सब आकर्षित हुए। तो जैसे तुम बच्चे आकर्षित हुए हो एक बाप के बन गए, ऐसे तुम बच्चे ही उनको भी एक बाप के बनाओ। तो ये सारी बातें खुद में अप्लाई की, ऐसे उनको भी अनुभव कराओ। फिर उसके बाद अनेक प्रकार के, हाँ, ज्ञान भी है संसार में, यथाशक्ति जीवन भी है, प्राप्तियां भी है, लेकिन वो सत्य ज्ञान नहीं है, ये था। इसलिए तुम बच्चे इसलिए आकर्षित हो क्योंकि आप तुम बच्चों को सत्य ज्ञान मिला। फिर उसके बाद फिर अनेक प्रकार की सेवा की युक्तियां, 50 साल की जो फीडबैक बाबा ने उनको दी कि कैसे 50 साल में तुम बच्चों ने संबंध संपर्क में उनको साथ लाया, अपने स्नेह से लाया, अनेक प्रकार की सेवाओं के माध्यम से ब्रह्मा कुमारी का थोड़ा परिचय। फिर एक बार और कही कि आवाज अभी बुलंद हुई है, पहले बदनाम थे, बदनाम से बुलंद हुई है आवाज अभी, पहले माना लोग नाम लेना भी नहीं चाहते थे, अभी नाम लेना चाहते थे ब्रह्मा कुमारी का, और अभी तो आना भी चाहते हैं, अभी तो सोचते हैं हमको कोई बुलाए। तो ये नाम बदनाम से बुलंद भी हुआ है। फिर अनेक प्रकार की सेवाओं की युक्तियां बताई, वर्कशॉप करो, पर्सनल एक्सपीरियंस बताओ, फिर स्टेज भाषण स्पीच रूपरेखा नहीं चेंज करो, ये सारी बातें। फिर उसमें क्या होना चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए, ट्रूथ होना चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए, रैम्बा होना चाहिए, ये सारी बातें फिर आगे बताई। ये सेवाओं में हमको क्या कौन कौन सी बातें अप्लाई करनी है ताकि सेवाओं में सफलता हो सके। और फिर विदेशियों से बाबा ने बात की, फिर दादी जी से बात की, मोहिनी बहन से बात की। तो बहुत सारी बातें बिखरे हुए पॉइंट हैं, इनको इकट्ठा करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, ओके, ओम शांति।
है।